ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿಯ ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿಯ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಮೋನತೀರಾ ವನಚಾರಿ ಯಮುನತೀರಾ ವನಚಾರಿ ಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Ya Radha Giridhare Radha Giridhare Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudire Nashta Praesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishikim Srimad Bhagavatam Skanda 9 Adhyaya 3 Shlok Sankhya 29 Kakudmi Revatim Kanyam Swam Adaya Vibhom Gataha Putriya Varam Pariprashtum Brahmalokam Apavratam Kakudmi Revatim Kanyam Kakudmi Revatim Kanyam Swamadaya Vibhum Gataha Swamadaya Vibhum Gataha Putyavaram Pariprashtum Putriya varam pariprashtam బ్రహ్మలోకం అపావృతం. బ్రహ్మలోకం అపావృతం. కుద్మీ రేవతీం కన్యాం స్వామాదాయ విభుం గతః. పుత్ర్యావరం పరిప్రష్టం బ్రహ్మలోకం అపావృతం. కుద్మీ రేవతీం కన్యాం స్వామాదాయం గతః. బ్రహ్మలోకమపావృతం. కకుద్మి రాజా కకుద్మి రేవతీం రేవతీ కో కన్యాం కకుద్మీ కీ పుత్రీ స్వాం నిజీ ఆదాయ లేకర్ విభుం బ్రహ్మా కే సమక్ష గతః గయా स्त्रिया अपनी पुत्री का वरम पति परिप्रष्टुम पूछने के लिए ब्रह्मलोक में अपावृतम तीनों गुणों से परे। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ककुद्मी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गया जो तीनों लोक गुणों से परे हैं और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक के भी तीनों गुणों से परे है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक के भी तीनों गुणों से परे है। अपावृतम ज्ञानस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बाईसवां श्लोक हुआ था, तेईसवां श्लोक का से तात्पर्य नहीं है, इससे तेईस से लेके आज का श्लोक तक हम उसका अनुवाद चर्चा करेंगे। तो आप सबको मालूम है शरियती महाराज शरियती अपनी पुत्री को बहुत डांटा, लेकिन उनकी पुत्री ने कहा हंसते हुए, पिताजी मेरे साथ में जो है वो कोई और नहीं है, मेरे पति है। मेरी तपस्या और मेरी पतिव्रता के बल के वजह से और प्रसन्न होके वो एक युवक का शरीर धारण किए। जैसे ही बात को उन्होंने सुना, उनके पिताजी ने सुना, तो तुरंत अपनी पुत्री को आलिंगन किए, बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये प्रसन्नता के बाद च्यवन ऋषि अपनी शक्तियों के द्वारा उस राजा को शक्ति प्रदान किया, शरियती राजा को शक्ति प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आप सोम यज्ञ करो। तो सोम यज्ञ बड़ा बड़ा यज्ञ होता है कर्मकांड में, जो कर्मकांड के अनेकों अनेक प्रकार के यज्ञों में सोम यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कर्मकांड में उनका उद्देश्य है कि मैं स्वर्ग जाऊं, स्वर्ग जाके सोमरस पीऊं। जश्मीनी कुमारों को ही प्राप्त सोमरस नहीं प्राप्त, जो ऐसे सोमरस है वो यज्ञ से प्राप्त होता है, उसको सोम यज्ञ कहा जाता है। तो सोम यज्ञ करने वालों को उनका एक टाइटल होता है सोमयाजी। वैसे बहुत सारे दक्षिण भारत में कुछ ब्राह्मणों का टाइटल होता है सोमयाजी, इसका अर्थ है कि जो सोम यज्ञ करने वाले हैं। तो मुनि ने बहुत बड़ा सोम यज्ञ का आयोजन किया, राजा ने सोम यज्ञ किया। वो सोम यज्ञ से सोमरस प्रकट हुआ, और जैसे सोमरस प्रकट हुआ तो कुद्म ने क्या किया, चवन ऋषि ने क्या किया, चवन मुनि उस सोमरस को लेकर अश्विनी कुमारों को दिया था, क्योंकि वो आदान प्रदान किया था उन्होंने, सौदा था कि अगर आप मुझे युवावस्था प्रदान करोगे तो मैं आपको सोमरस दूंगा। तो अश्विनी कुमार भले ही वो सोमरस पीने के लायक नहीं थे, लेकिन चवन ऋषि ने सोमरस को प्रदान किया, और जैसे बात मालूम पड़ा इंद्र को, इंद्र तुरंत आए, इंद्र अपना वज्र लेके चवन ऋषि को मारने के लिए पहुंचे। इंद्र बीइंग परप्लेक्स्ड एंड एंग्री, बहुत गुस्से में क्रोध में आके चवन ऋषि को मारने के लिए आए, तुरंत उन्होंने क्या किया, चवन ऋषि ने अपनी शक्ति के द्वारा इंद्र के जो हाथ है उसको पैरालिसिस कर दिया, उसको वो ही चल ही नहीं रहा था, फिर भी इंद्र प्रयास कर रहा था, लेकिन चवन ऋषि का शक्ति इतना था कि वो कुछ कर नहीं पाए। ऑल द अश्विनी कुमार वर ओनली फिजिशियंस, देयरफॉर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्रिंकिंग सोमरस इन सैक्रिफाइस, द डेमिगॉड्स अग्रीड टू अलाउ देम हेंसफोर्थ टू ड्रिंक इट। तो जैसे चवन ऋषि ने इस प्रकार किया, तब इंद्र क्षमा मांगे चवन ऋषि से, ने कहा ठीक है, भले ही अश्विनी कुमार केवल एक वैद्य है, केवल एक वैद्य है, उनका कोई योग्यता नहीं सोमरस पीने के लिए, लेकिन अभी से आपके बल के द्वारा ये भी सोमरस पीने के योग्य हो जाएंगे। तब बाद में राजा सरयति ने क्या किया, तीन पुत्र और उन्होंने उत्पन्न किया, उत्तम भरही, आम्रत और भूरी सेना, और आम्रत से एक पुत्र का पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था रेवत। जो रेवत राजा है वो बड़ा प्रसिद्ध राजा हुए, वो परीक्षित रेवत राजा एक बड़ा सा विशाल नगरी बनाया, कुशस्थली करके एक बड़ा सा राज्य बनाया। ये राज्य कहां बनाया, उन्होंने एक सागर के अंदर बनाया, और आम्रत नामक एक प्रदेश है उसके ऊपर राज्य किया उन्होंने। उनको 100 पुत्र हुए, और उन सारे 100 पुत्रों में श्रेष्ठ सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, उनका नाम था ककुद मुनि। अभी शर्यति राजा का तीन पुत्र हुए, उन तीन पुत्रों में ये जो रेवत है, शर्यति बिगॉट थ्री सन्स, उत्तानवरही, आम्रत और भूरी सेना, और आम्रत के जो पुत्र है रेवत हुए, यानी शर्यति के जो पोते है वो रेवत है, और रेवत का जो पुत्र है वो कौन है, वो रेवत का पुत्र है ककुद, ककुद्मी, और ककुद्मा की पुत्री है रेवती। यानी शर्यति राजा उनका पोता की पोती है ये रेवती। रेवती के बारे में सबको मालूम है कौन है रेवती, बलराम जी की, तभी कनेक्शन इस प्रकार है। हमारे जो बलराम है, आराध्यदेव बलराम, उनकी प्रिय पत्नी रेवती, उनके जो दादा के दादा है वो शर्यति राजा है। तो ये शर्यति राजा जो है उनके पोते हुए रेवत। मैं सोच रहा था रेवत, रेवत का पुत्री रेवती है, नहीं, रेवत की पोती है रेवती। आज तक मैंने ऐसा सोचा था कि रेवत के राजा रेवत के पुत्री है, लेकिन पुत्र का पुत्री है तो पोती है। अभी उनके पिता रेवती के पिता ककुद्मी, जिनका श्लोक में पहला नाम आया ककुद्मी, ककुद्मी के पिता जो रेवत है, बड़ा उनके चरित्र बड़ा अद्भुत है, बड़े राजा हुए। तो कुछ लोगों का कहना था कि कहीं और शास्त्र में रेवत लेके गए, राजा रेवत लेके गए थे ब्रह्मा जी के पास, लेकिन इधर ऐसा वर्णन है, ककुद्मी रेवतीम कन्या, ककुद्मी का जो पुत्री रेवती है वो कन्याम, पुत्री कन्या को कहां लेके गए, स्वामादाय विभुम गतः, वो लेके गए विभू के पास, ब्रह्मा जी के पास लेके गए, स्वयं स्वामादाय अपने साथ में लेके गए पिताजी। तो क्यों लेके गए, क्या कारण था, क्योंकि रेवती इतनी सुंदर थी और सारे सद्गुणों से संपन्न थी, वो सोचने लगे इसके योग्य वर कहां से ढूंढूं मैं, मुझे तो इनके बराबर कोई दिख नहीं रहा है। अगर कोई सुंदर स्त्री का पुत्री होती है पिताजी को बहुत चिंता होती है, बहुत बुद्धिमान भी हो जाती है, पिताजी को ज्यादा चिंता होती है क्योंकि उनको उनका योग्य वर को ढूंढना पड़ेगा। वैसे दशरथ राजा को भी यही चिंता था। जैसे सीता जी बहुत सुंदर थी, अद्भुत थी, एक दिन अचानक दशरथ जी को खबर मिला सीता जी जो है वो गेंद खेल रही हैं और वो गेंद सहेलियों के साथ खेलते खेलते वो जो गेंद है वो पेड़ के ऊपर अटक गया था और उस गेंद को निकालने के लिए सीता जी ने शिव धनुष उठाया और दशरथ महाराज भागते भागते गए। उन्होंने देखा जो शिव धनुष बहुत लंबा छोड़ा था, जो 300 पयों के एक डब्बा के ऊपर रखा हुआ था, जिसको धक्का देने के लिए हजारों लोग लगते हैं, उठाने की बात तो छोड़िए, वैसा जो शिव धनुष जो परशुराम जी के द्वारा सूर्यवंश के राजाओं को मिला था, वही शिव धनुष को सीता जी ने क्या किया था, आराम से छोटी सी बालिका थी 5 साल की और तुरंत वो धनुष लिया और वो गेंद को निकाल लिया, वापस धनुष को रख दिया। ये देख के दशरथ को हार्ट अटैक जैसा आ गया। इतना बड़ा धनुष, हजारों लोग लगते हैं इसको धक्का देने के लिए। अभी उनका चिंता ये नहीं कि आश्चर्य तो बात की बात है, उनका चिंता होने लगी अभी इतना शक्तिशाली है मेरी पुत्री, उसका योग्य राजा योग्य पति कम से कम उतना तो शक्तिशाली होना चाहिए, उससे कम तो चलेगा नहीं पति। तब उनको इसको अभी फिर क्या करें, केवल भगवान ही उसको उठा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए स्वयंवर में उन्होंने ये बात रखा था, जो व्यक्ति कम से कम शिव धनुष को उठा सकता है वही व्यक्ति सीता जी से विवाह कर सकता है, इसलिए ये स्वयंवर का आयोजन किया गया था। क्योंकि जितना योग्य होती है पुत्री उतना पिताजी को टेंशन होता है, चिंता होती है। अपनी पुत्री का विवाह कराने का जो चिंता है हर पिता को होता है, होना चाहिए, लेकिन आजकल तो कोई उस प्रकार का चिंता नहीं रहता है, जो करना है करना है। लेकिन ये स्वाभाविक है हर पिता को, ये वैदिक सभ्यता है, वर्णाश्रम धर्म है। जैसे 8 साल की कोई कन्या हो जाती है, पुत्री हो जाती है, उनको ये चिंता लेना चाहिए मैं उनको योग्य वर कहाँ से ढूंढूं। ऐसे है जब वैदिक सभ्यता के अनुसार वर मांगने के लिए, वर को ढूंढने के लिए पिताजी जो है कन्या के पिताजी वो उनका चप्पल घिस जाते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं ताकि मेरा पुत्री का जो अच्छा जगह पे विवाह हो। तभी उनको ऐसा लगा ककुदनी को, वो मेरी कन्या का जो विवाह है मुझे नहीं लगता इस जगत में कोई ऐसा हो उनके समान। अभी अगर जन्म दिया है तो निश्चित रूप में विधाता विधि ब्रह्मा जी ने किसी ना किसी को वर के रूप में रखा होगा, क्योंकि कोई ऐसा किसी का जन्म नहीं होता है कि पितरी का इतना योग्य पुत्री का या योग्य वर के बिना ऐसा जन्म मिलता नहीं है। ये जन्म देने वाले कौन है, विधाता है, विधाता ब्रह्मा जी है। इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा गया है, विभुम। ब्रह्मा जी को विभु इसलिए कहा गया है, विभु मतलब महान, वो महान इसलिए क्योंकि वो महान चीजों को जानते हैं, ये हर चीज को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। वो सर्वज्ञ किस रूप में है, सब लोगों के कर्म के हिसाब किताब को ब्रह्मा जी जानते हैं। वैसे यमराज जो हैं वो कर्म के दंड को या उसके परिणाम को देने वाले एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, लेकिन जो मेन ब्रह्मा जी जो है वही एकमात्र व्यक्ति सारे जगत में सबके जो कर्म है उसको लिखने वाले हैं, ये इसका ये है, ये करने वाला है, इस प्रकार के कर्म के जितने भी कार्य किए हैं सोचे सब कुछ का सार निकाल के ब्रह्मा जी अपने माथे के ऊपर लिखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म रेखा, कुछ लोग ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल इस बात को कहा जाता है, पता नहीं ब्रह्मा जी माथे के ऊपर क्या लिखा है, यानी ब्रह्मा जी लिखते हैं कि इसका विवाह इससे होगा, ये इस प्रकार कार्य करेगा, ये समय में इसका मृत्यु होगा, ये समय में इसकी इस प्रकार की प्रगति होगी, ये समय में इसका इस प्रकार होगा, ये अनेकों अनेकों जो चीजें हैं हमारे कर्म के संबंधित चीजें ये ज्योतिष में जो लिखा गया है वो मूल जो है ब्रह्मा जी उसके जानकार है। तब ककुदनी ने सोचा कि मेरी पुत्री अगर उनका प्राकट्य हुआ है, उनका जन्म हुआ है, निश्चित रूप में कोई ना कोई योग्य वर होगा, वो वर केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, चलो मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, स्वयं आदाय विभुम गतः, क्यों गए थे ऐसा वर्णन किया है, पुत्रवरम परिपृष्टम, पुत्रवरम परिपृष्टम, वो ब्रह्मा जी के पास गए, पुत्री हाँ पुत्रिया वरम परिपृष्टम, मेरी पुत्री का वर कौन है। संस्कृत में ये जो वर शब्द आया है इसका भी अर्थ जानना चाहिए। परसों कुछ दिन पहले क्लास दिया था, उस दिन ये वर शब्द का अर्थ कहा था। जब किसी का विवाह होता है, कोई कन्या का विवाह होता है, उस समय वो उनका विवाह एक वर के साथ होता है। इनको वर का अर्थ है संस्कृत भाषा में श्रेष्ठ। और इस जगत में श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। तो वर को वर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उस समय के लिए भगवान की प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। अस्तित्व में जिस समय विवाह होता है किसी का, वो विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं होता है, वो कृष्ण के साथ होता है। लेकिन कृष्ण तो स्वयं आते नहीं है, इसलिए कृष्ण अपना एक प्रतिनिधि के रूप में वर जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो विवाह मंत्रों में वर्णन है कि वराय विष्णु रूपाय, वर जो है वो विष्णु के प्रतिनिधि हैं। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए कोई पुरुष को मेरे साथ विवाह हुआ है, नहीं, विवाह अस्तित्व में कृष्ण के साथ हुआ है, लेकिन वो स्वयं नहीं आते थे इसलिए आपको भेजे, चलो मैं ऑन बिहाफ ऑफ मी आप विवाह करो। तो ये वराय, लेकिन रेवती का वर जो है उसके लिए बहुत योग्यता होना चाहिए, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है। ये दसवां स्कंद में हमको इसका पूरा वर्णन मिलता है विश्वनाथ जी ठाकुर के टीका में। आगे भी ऐसा वर्णन आएगा कि जब ब्रह्मा जी के पास गए तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी उधर कुछ गंधर्वों के द्वारा कीर्तन सुन रहे थे, गान सुन रहे थे। ब्रह्मलोक में वो आलतू फालतू के गाने नहीं होते, भगवान के संबंधित कीर्तन होता है, उस कीर्तन के हिसाब से नृत्य होता है और अनेकों अनेकों देवताएं नृत्य करते हैं और अनेकों अनेकों गंधर्व उनको गाते हैं। और उन गंधर्वों में जो श्रेष्ठ गंधर्व है दो है, जिनका नाम है हु हु और हा हा, ये दो गंधर्व गाते हैं उधर। तो ब्रह्मलोक में जब गए थे, ब्रह्मा जी जो है कीर्तन सुन रहे थे, नृत्य कर रहे थे, नृत्य का आनंद ले रहे थे और सब भगवान की भक्ति में मग्न थे। तो जैसे कुकुटनी राजा गए, रेवती को साथ में लेके गए, तो उन्होंने देखा कि ये ब्रह्मा जी कीर्तन सुन रहे थे, चलो थोड़ा देर रुकता हूँ। तो 5 मिनट के बाद जब श्री कीर्तन समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो आपने ऐसा पुत्री को जन्म दिया है तो उनका तो योग्य वर होना चाहिए, कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप कब आए थे? बस 5 मिनट हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा 5 मिनट तो छोड़िए, अरे मेरे जो लोक में 5 मिनट है कि नीचे की पृथ्वी लोकों में हजारों हजारों संवत्सर बीत गए, हजारों साल बीत गए होंगे, अनेकों युद्ध युग बीत गए, आप जल्दी जाओ। आप जैसे जाएंगे अभी द्वापर युग चल रहा होगा, द्वापर युग में कृष्ण और बलराम प्रकट है, बलराम जी आपकी पुत्री के लिए योग्य वर है, उनसे आप जल्दी जाके विवाह करो, ऐसे ब्रह्मा जी ने उनको कहा। आगे ऐसा स्टोरी आता है कि इस प्रकार ब्रह्मा जी को बलराम जी के पास गए, उनको खुद में जाके उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री से विवाह करो। बलराम जी ने कहा ठीक है। विवाह का समय आया तो ये तो सत्यु की कहानी है। सत्यु में लोगों का जो लंबाई है वो हजारों गुना ज्यादा रहता है। कलयुग में मान लीजिए हमारा 6 फुट का एवरेज हाइट है, तो द्वापर युग में 60 फुट का एवरेज हाइट होता है, त्रेता युग में 600 फुट होता है और सतयुग में 6000 फुट का एवरेज हाइट होता है। अभी बलराम जी कृष्ण और बलराम प्रकट हुए थे द्वापर युग के अंत में, उनका हाइट था करीबन 7.5-8 फुट के करीब था। अभी रेवती का हाइट कितना था? हजारों में था। अभी दोनों विवाह कैसे किया जाए? बलराम जी ने क्या किया, चलो उनका हल लिया और रेवती को थोड़ा सा ऊपर थे तब रेवती का हाइट छोटा छोटा हो गया, तब बलराम जी के साथ उनका विवाह हुआ। तब कृष्ण का प्राकट्य का प्रसंग में हम सब जानते हैं कि गोमाता का रूप धारण करके पृथ्वी गई थी। पृथ्वी माँ बहुत दुखी थी, अक्रांता भूरी बारेण, बहुत सारे उत्पात मच गए थे पूरा पृथ्वी में असुरों के द्वारा। बहुत दुखी होके गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा नाम शरणम ययो, ब्रह्मा जी का शरण लेने गई। ब्रह्मा जी के पास जाके रोने लगी, ऐसी मेरी अवस्था है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट क्या है? सृष्टि है। अभी इधर क्या है? पालन की डिपार्टमेंट है। और पालन करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो विष्णु के पास जाएंगे। और इधर इनका दुख जो है वो असुरों की वजह से है, तो असुरों को नाश करना है। नाश करने वाला डिपार्टमेंट कौन है? शिव जी है। तो शिव जी के पास लेके गए ब्रह्मा जी उस पृथ्वी माँ को। शिव जी को कहा, हो सकता है आपका भी काम आएगा। अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, तो आप डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में चलो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से पूछने जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये जगत को मेंटेन करने के लिए स्वयं भगवान थोड़ी ना आएंगे पृथ्वी को संभालने के लिए। हो सकता है अपने इंद्र को भी नियुक्त करें, क्योंकि इंद्र जो है वो भी मेंटेन करते हैं कृष्ण के आदेश के अनुसार। तो इंद्र को भी साथ में लेके जाता है। इंद्र निकल पड़े तो सारे देवता भी आ गए। तो ब्रह्मा जी सब त्रिनयनस यानी तीन आंख वाले शिव जी के साथ और इंद्र सारे देवताओं के साथ क्षीरम तीर पयोनिधे कहां पहुंचे? वो पहुंचे ये क्षीर सागर। ये स्टोरी तो आपको दसवां स्कंद में मिलता है। आपको मालूम है कैसे कृष्ण का प्राकट्य हुआ, क्योंकि ये धरती को भूमाता को रक्षा करने के लिए, धरणी को रक्षा करने के लिए, अनेकों अनेकों अस्त्रों का प्रभाव से बचाने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। तो ये जब स्टोरी चल रहा था तब उस प्रसंग में वर्णन आता है कि ये जो पृथ्वी माँ है गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। जब ब्रह्मा जी के पास गई तो कौन से ब्रह्मा के पास गई? अभी आप सबको मालूम है सतयुग में कुकुदमी रेवती को साथ में लेके वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो सतयुग से लेके ये कृष्ण बलराम का प्राकट्य होने तक ब्रह्मलोक में क्या चल रहा था? ब्रह्मलोक में क्या चल रहा था? कीर्तन हो रहा था, हू हा गा रहे थे, है कि नहीं? अभी पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी के पास गई, वो कब गई? कृष्ण के प्राकट्य से थोड़ा सा पहले गई होंगी या द्वापर युग में गई। तो जब इधर द्वापर युग चल रहा था ब्रह्मलोक में क्या हो रहा था? कीर्तन हो रहा था। तो ये पृथ्वी माँ गाय का रूप धारण करके द्वापर युग में जब ब्रह्मलोक में गई क्या चल रहा होगा? कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन ऐसा कैसे कि ब्रह्मा जी जो है इन सबको लेके गए, पृथ्वी का सब बातचीत कैसे किए? तो इधर वर्णन है कि ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी माँ गए थी ये वो ब्रह्मा नहीं है जिसका वर्णन इधर चल रहा है। जिस ब्रह्मा के पास रेवती गई थी उनके पिताजी के साथ कुकुटमी के साथ, वो ब्रह्मा जी अलग है और वो ब्रह्मा जी जिनके पास पृथ्वी माँ रूप गाय का रूप धारण कर गए थी तो वो ब्रह्मा अलग है। तो इन दो ब्रह्मा में अंतर क्या है? सबसे पहला जानना चाहिए पृथ्वी माँ जिस ब्रह्मा के पास गई थी वो सत्य लोक में निवास करने वाले ब्रह्मा नहीं है, वो मेरु पर्वत के ऊपर निवास करने वाले ब्रह्मा जी है। इसलिए शास्त्रों में आपको दो ब्रह्मा का वर्णन मिलता है, एक ब्रह्मा जो मेरु पर्वत के ऊपर निवास करते हैं और दूसरे ब्रह्मा जो है वो जो सत्य लोक में निवास करते हैं। तो ये जो इस श्लोक में वर्णन हुआ है, पुत्र्या वरम परिपृष्टम ब्रह्मलोकम अपावृतम, तो कुकुदमी अपनी पुत्री को लेके ब्रह्मलोकम अपावृतम ब्रह्मलोक में गए। ये ब्रह्मलोक का वर्णन शास्त्रों में अनेकों जगह अनेकों अनेकों प्रकार वर्णन मिलता है, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी पाद इसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सत्यलोक है, सत्यलोक से परे एक लोक है जिसका नाम है ब्रह्मलोक। और ये सत्यलोक ऐसा लोक है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, ऐसा भागवत में एक श्लोक है जहां इस प्रकार वर्णन किया गया है। जब इस सृष्टि का वर्णन है तब श्रील जीव गोस्वामी का वर्णन करते हैं कि जो सत्यलोक का इधर वर्णन हुआ है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, इसका अर्थ यह नहीं कि सत्यलोक दिव्य लोक है, नहीं। ये सत्यलोक के एकदम बिल्कुल ऊपर एक लोक है ब्रह्मलोक, जो तीनों गुणों से परे है। जो दिव्य है, जो वैकुंठ का ही एक विस्तार है, वो लोक से एक प्रकाश उत्पन्न होता है। वो प्रकाश जो है सत्यलोक के ऊपर गिरता है, जिसके वजह से सत्यलोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए ये सत्यलोक को भी कभी कभी दिव्य कहा गया है, क्योंकि ये वैकुंठ का एकदम बिल्कुल करीब है। जैसे मान लीजिए कोई एक लोहा है, लोहा आप चुंबक के एकदम नजदीक में रखेंगे तब ये लोहा भी क्या करता है, वो चुंबक जैसा कार्य करने लगता है। वो लोहा भी चुंबक नहीं हुआ है, लेकिन वो चुंबक जैसा कार्य करने लगता है। उस हिसाब से इस श्लोक में वर्णन किया गया है ब्रह्मलोकम अपावृतम। अपावृतम शब्द का अर्थ क्या है कि जहां ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है उस जगह को अपावृतम कहा गया है, ब्रह्मलोकम अपावृतम। तो ब्रह्मलोक अपावृतम कैसे, तीनों गुणों से परे कैसे है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है आभम ब्रोणा लोके पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आना पड़ता है। तो ये ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आना पड़े, तो इधर ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मलोक जो अपावृतम तीनों गुणों से परे है, ऐसा क्यों है? इसका यही सार है, यही निष्कर्ष है कि सत्यलोक है जिसको भी कभी कभी ब्रह्मलोक कहा जाता है, और उससे परे और एक ब्रह्मलोक है जो दिव्य है। ये दोनों एकदम निकट होने की वजह से कभी कभी वो लोहा भी चुंबक जैसा कार्य करता है, क्योंकि वो लोहा चुंबक के एकदम समीप है। अगर वो लोहे को अलग करेंगे वो लोहा को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन चुंबक के नजदीक में रखो तो क्या होता है, वो लोहा को आकर्षित करने लगता है। इसलिए सत्यलोक जो है वो भले ही भौतिक जगत का एक भाग है, वो ऑलमोस्ट वैकुंठ है, क्योंकि ऐसा कुछ वर्णन हुआ है शास्त्रों में। जो लोग सत्यलोक जाने की योग्यता प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मा की मृत्यु के समय ब्रह्मा जी उन सत्यलोक के निवासियों को भगवान की धाम में लेके जाते हैं। तो एक तरीके से बताया जाए जो ब्रह्मलोक पहुंच गया है वो मुक्त हो गया है, क्यों? ब्रह्मा जी वो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उन्हीं जीवों का जिम्मेदारी लेते हैं ब्रह्मा जी भगवान की धाम में जाने की, जो लोग ब्रह्मलोक में भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक में जाके, ब्रह्मलोक में अगर वो निराकार स्वरूप का ध्यान करने लगे तो ब्रह्मलोक जाने के बाद भी वो वापस भौतिक जगत में आने का संभावना रहता है। इसलिए ब्रह्मलोक में भी दो प्रकार के लोग हैं, जिन लोगों को ब्रह्मा जी स्वयं अपनी धाम में लेके जाते हैं, जो लोग क्रम मुक्ति के योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। अभी मुक्ति का रास्ता भी दो प्रकार है, एक होता है क्रम मुक्ति, दूसरा है वो भगवान की भक्ति के बल से भगवत कृपा प्राप्त करके सीधा मुक्ति प्राप्त करना, भगवान की धाम में जाना। तो ये हमारा जो रास्ता है जो हम अपनाते हैं, हरे कृष्ण जप करना, साधना करना, इसके द्वारा कि ये मृत्यु के बाद अगर कोई सिद्ध हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, सीधा भगवान की धाम में जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो सीधा भगवान की शुद्ध भक्ति को स्वीकार किए बिना वर्णाश्रम को पालन करते हैं, करते करते ऊपर की लोकों में जाते, एक गए एक स्टेप बाय स्टेप जाते, जब ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के अनुगत्य होते हैं, भक्ति करते हैं, तब ब्रह्मा जी जो है अपनी मृत्यु के समय भगवान की धाम में लेके जाते हैं। तो ये जो मुक्ति है क्रम मुक्ति कहा गया है, जो बहुत लंबा चौड़ा है। भौतिक जगत में ब्रह्मा जी का मृत्यु तक इंतजार करना साधारण चीज थोड़ी ना है, हम तो खाली इसी जन्म में खत्म करना है सारा झंझट। हम अनेकों चीजों में भी फंसे हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि और चेतना, ये सब को खत्म करके इसी जन्म में मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक प्रकार की मुक्ति है जिसका नाम है क्रम मुक्ति, जो मध्य संप्रदाय के आचार्यगण स्वीकार करते हैं। वो क्रम मुक्ति क्या है, वो ब्रह्मलोक में जाएंगे और ब्रह्मा जी उनको लेके जाएंगे। ये भी साधारण चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रम मुक्ति माना जाता है। जो क्रम मुक्ति के मार्ग में, क्रम मुक्ति का अर्थ क्या है, अभी हम इस पृथ्वी लोक में हैं, ऐसा धीरे 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 एक एक लोक जाते जाते ब्रह्मलोक में जाके फिर वैकुंठ में जाना, इसको क्रम मुक्ति कहा गया है। अगर जो क्रम मुक्ति को पालन नहीं करना चाहता है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या करता है, वो सीधा कोई भी लोक में हो, सीधा आता है पृथ्वीलोक में। पृथ्वीलोक में आके क्या करेगा, अच्छा सा भक्ति करके इसी पृथ्वीलोक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर मान लो कोई स्वर्ग में है, वो स्वर्ग से भगवान की धाम में कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गया है, भले ही कोई आप 8 माले की बिल्डिंग में रहते हो, 8वां माले में हो फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग के बाहर जाना है तो कहां जाना होगा आपको, सबसे ग्राउंड फ्लोर में आके जाना होगा, है कि नहीं। ये पृथ्वी लोक जो है वो ग्राउंड फ्लोर के बराबर है। भले ही इंद्र भी हो, इंद्र को मुक्ति प्राप्त करना है फिर इधर आना होगा, ये पृथ्वी लोक में आके ही जाना होगा। लेकिन ब्रह्मा जी का खाली वो एग्जेम्पशन है। ब्रह्मा जी जो है अपनी मृत्यु के समय सीधा सारे अपने जो जीव शुद्ध हो चुके हैं उन सबको, ब्रह्मलोक के निवासियों को, वो भगवान के धाम में लेके जाते हैं। तो इस जगह ये जो वर्णन किया गया ब्रह्मलोकम अपावृतम, ये ब्रह्मलोक तीनों गुणों से परे हैं, इसका सीधा वर्णन वेदांत सूत्र में प्राप्त होता है। मैं बहुत इसके बारे में पढ़ने के लिए प्रयास किया था, जो भी कुछ जगह मिला मुझे इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हमें तक हमको अनुभव है कि ब्रह्मलोक भी एक भौतिक जगत का लोक है, ये सही बात है। और साथ साथ में शास्त्रों में और एक ब्रह्मलोक का वर्णन हुआ है जो तीनों गुणों से परे है, जो सत्यलोक के एकदम नजदीक है, जिसकी वजह से सत्यलोक में भी रजस और तमस की प्रभाव नहीं होता है। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं इधर जो चीज का वर्णन हुआ है कि अपावृतम तीनों गुणों से परे है, इसका अर्थ यह है कि रजस और तमस की भावना जरा सा भी दिखाई नहीं पड़ता है। मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा है दाग है, लेकिन इसका प्रकाश इतना सुंदर है, अद्भुत है कि वो दाग जो है ये प्रकाश और दाग को वो कवर कर देता है। तो वैसे ही ये जो ब्रह्मलोक है, भले ही उसके अंदर गुणों का प्रभाव है, लेकिन ये ब्रह्मलोक जो है दिव्य ब्रह्मलोक के नजदीक में होने की वजह से, ये दिव्य ब्रह्मलोक से उत्पन्न हुआ ब्रह्म तेज का प्रकाश की वजह से, इसके अंदर रजस तमस की जो भावना है भौतिक जो है वो ढक जाता है। ये बात हमको वेदांत सूत्र का जो पहला भाग का 3रा अध्याय से हमको प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा ये बातें हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज जो है हमको बहुत ये करने वाली जो बात है, कंफ्यूज करने वाली बात है, ब्रह्मलोक को तीनों गुणों से परे माना गया है, उसी के ऊपर ज्यादा मैंने चर्चा किया कि जो ब्रह्मलोक है ये सत्यलोक है, सत्यलोक के नजदीक में एक ब्रह्मलोक है जो दिव्य है, वैकुंठ का विस्तार है, उसका प्रभाव की वजह से ये ब्रह्मलोक में भी हमको ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों गुणों से परे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उधर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन फिर ये जानना चाहिए सत्य लोक जो है वे 14 भुवन में एक लोक है। ओम भूर भुव स्व जनन महत तपस सत्य, ऊपर के 7 लोक है, अटल अवितल सुतल तलातल रसातल महातल पाता, वो नीचे के 7 लोक है। हम लोग जो बोलते 14 भुवन, 14 भुवन क्या है, ये 7 ऊपर के और 7 नीचे के है। तो सत्यलोक भी ये भौतिक जगत के अंदर ही आता है, लेकिन सत्यलोक के ठीक एकदम ऊपर एक दिव्य लोक है ब्रह्मलोक, जिससे प्रकाश की वजह से सत्यलोक के अंदर भी इस प्रकार के दिव्य गुण प्रकट होता है। ये बातें हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। कोई टीका है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ 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 वो आपका मर्जी है आप कहाँ जाना चाहते, क्रमोपति जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, लिफ्ट में जाना है सीढ़ियां चढ़ के जाना है, आपके ऊपर है। एक क्रम मुक्ति जो है वो सीढ़ियां चढ़ के जाने के बराबर है, लेकिन ये जो मुक्ति है हमको जो प्राप्त है वो स्पेशल मर्सी है। चैतन्य महाप्रभु का विशेषता है कि हमको वैसा लिफ्ट दे दिया, अंदर जाके खाली हरे कृष्ण का बटन दबाओ तो सीधा वैकुंठ तक, नहीं तो स्वर्ग जाओ, उधर से महार लोग जाओ, जन लोग जाओ, तप लोग जाओ, सत्य लोग जाओ, और ब्रह्मा जी का मृत्यु तक इंतजार करो। ब्रह्मा जी का कितना लंबा समय है, ब्रह्मलोक में आप एकदम ध्यान करते रहो तो ये सब चीजें कितना लंबा समय है। अरे बहुत ऐसे बहुत लंबा समय बिता दिया हमने, वी जस्ट हैड टू पैक ऑफ, लेकिन वो पैक ऑफ करना है तो हमको ये भौतिक झंझट से सब क्या एट गिव अप। जब तक पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं होंगे तब तक वैकुंठ में नहीं जाएंगे। और ब्रह्मा जी लोग जो ब्रह्मलोक में जो है वो ब्रह्मा जी एकदम टच करते हैं, एकदम बराबर पक गया तभी लेके जाते हैं। तो अभी कृष्ण भक्ति से हम इधर ही वो कार्य कर सकते। और कोई प्रश्न है? एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है संतराज। हाँ हाँ कौन? मेरु मेरु में एक ब्रह्मा है, ठीक है, और सत्यलोक में एक ब्रह्मा है। हाँ ये जो ब्रह्मलोक में ये जो ब्रह्मा है वो विष्णु का विस्तार है, विष्णु ही है वो। हाँ वो कभी चार मुख रहता है, कभी पांच मुख रहता है, कभी एक मुख रहता है, तो ऐसा शास्त्र वर्णन है। ये ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा है वो विष्णु का ही विस्तार है, विष्णु तत्व है। तो एक तरीके से बताया जाए तो आप मान सकते तीन है, लेकिन उसमें से जो ब्रह्मा का वर्णन किया है वो ब्रह्मा एक विष्णु का नाम है। विष्णु सहस्त्र में भी ब्रह्म करके शब्द आता है, वो विष्णु का नाम है। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी चर्चा में विष्णु के विस्तार के वर्णन आता है, उसमें जो तदेकात्म रूप के अंतर्गत एक ब्रह्मा का वर्णन है वो कौन है? विष्णु तत्व है, व्यू है, ये ब्रह्मा नहीं है। तो ये सब है, ठीक है। मंत्राश्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।